आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। 30 मार्च हो गई है आज। ले आए हम एक बार फिर से आज तक रेडियो पर इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट। नाम है दिनभर और मेरा नाम है नितिन ठाकुर। अगले आधे घंटे में देश दुनिया का पूरा हाल हम देंगे आपको। किन खबरों पर ठहर कर बात करेंगे ये बताता हूँ। बंगाल में दूसरे फेज के चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन था आज। नंदीग्राम की जंग भी इसी चरण में लड़ी जानी है, तो क्या होता रहा पूरे दिन ये बताऊंगा। दिल्ली से लेकर मुंबई तक में कोरोना पर त्राहिमाम मचा है, उसकी भी रिपोर्ट लेंगे। और म्यांमार पर दुनिया के बड़े देशों का शिकंजा कसने लगा है, भारत का क्या स्टैंड रहने वाला है ये समझेंगे एक्सपर्ट से। और एक बड़ी कंपनी का डेटा लीक हो गया है आज, बताऊंगा कि कौन सी है। चेक कीजिएगा कि आपका डेटा भी महफूज है या नहीं है। लेकिन पहले खुशबू से हेडलाइन सुनते हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे पर ओराकांडी में मतुआ समुदाय के मंदिर में जाने पर टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है। टीएमसी का कहना है कि पीएम मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बंगाल और असम में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया है। दूसरे चरण के चुनाव में बंगाल की सबसे इम्पोर्टेंट सीट नंदीग्राम भी शामिल है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी आमने सामने मैदान में हैं। भारतीय रेलवे द्वारा विभिन्न रेल मार्गों पर नई अनरिजर्व्ड स्पेशल रेल सेवाओं की शुरुआत की गई है। यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के इरादे से ये नई सेवाएं शुरू की गई हैं। ताजिकिस्तान में आज हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। इस दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी सम्मेलन में मौजूद रहे। सम्मेलन पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। चर्चा ये है कि क्या भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। देश भर में पिछले 24 घंटों में भारत में 56,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 271 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में आज 992 नए मामलों की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया है कि देश के जिन 10 जिलों में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस है, उसमें से 8 महाराष्ट्र से हैं। साथ ही सबसे ज्यादा मामलों में दिल्ली भी शामिल है। पंजाब में कोरोना के कहर को देखते हुए प्रतिबंधों को 31 मार्च से बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दिया गया है। उधर मध्य प्रदेश में सरकार ने स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया है। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल अब 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज 4 दिन बाद कमी देखी गई है। आज दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 22 पैसे कम होकर 90.56 रुपये पर आ गया। डीजल भी प्रति लीटर 23 पैसे कम होकर 80.87 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है। और क्रूड ऑयल बाजार में भी थोड़ी नरमी है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $64.79 प्रति बैरल के आसपास चल रहा है। पिछले 15 दिन में कच्चे तेल का भाव 15% से ज़्यादा टूटा है।
9th इंडिया में गर्मी ने दस्तक दे दी है, लेकिन बंगाल और केरल में पॉलिटिक्स की लू तेज रफ्तार से जारी है। पीएम मोदी आज केरल के पलक्कड़ में थे, उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे थे मेट्रो मैन ई श्रीधरन। दिल्ली में मेट्रो का सपना साकार करने के बाद अब उनके सियासी ख्वाब में सीएम की कुर्सी है। मोदी ने यहां रैली की और कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट में मैच फिक्सिंग हो गई है।
द हाई नंबर ऑफ रोड ब्लॉक्स बाय यूडीएफ and LDF has made the speed of development slower.
केरल में LDF और UDF की वजह से डेवलपमेंट की स्पीड धीमी हो गई है, इसलिए अब वक्त है फास्ट डेवलपमेंट का, जो BJP वादा करती है। लेकिन फास्ट से यहाँ मेरा मतलब है F से फिशरीज एंड फर्टिलाइजर्स, A फॉर एग्रीकल्चर एंड आयुर्वेदा, S फॉर स्किल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस एंड T फॉर टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी।
For skill development and social justice, T for tourism and technology.
केरल के बाद बंगाल की बात। दूसरे चरण के चुनाव के लिए यहां प्रचार का आखिरी दिन था आज, तो धुआंधार होना ही था। इस फेज में सबसे हॉट सीट है नंदीग्राम, वो आपको बताइए कि क्यों है। तो ममता बनर्जी ने व्हीलचेयर पर बैठकर आज पदयात्रा की। उनके निशाने पर पहले दोस्त रहे लेकिन अब दुश्मन बने शुभेंदु अधिकारी का परिवार था।
আমি আপনাদের বলি এরা মানুষের।
बीजेपी के गुंडे बंगाल और नंदीग्राम में घूम रहे हैं। मुझे सुनने में आया है कि बीजेपी अपनी एक महिला कार्यकर्ता की हत्या करके उसका इल्ज़ाम टीएमसी पर डालेगी। बीजेपी को लोगों पर यकीन नहीं है। मैं नंदीग्राम छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ।
जोर भाजपा का भी यहाँ पूरा है। अमित शाह ने रोड शो किया। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनका काफिला ममता के रोड शो के करीब से गुजरा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खूब जोर शोर से धार्मिक नारे लगाए। इस दौरान अमित शाह ने दावा किया कि शुभेंदु भारी मतों से जीत रहे हैं।
पूरे बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए अपने वोट देने की बारी का इंतजार कर रही है। नंदीग्राम में भी मैंने यही देखा है। मैं आज नंदीग्राम की जनता को भी अपील करना चाहता हूं कि आपको सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को जिताता नहीं, ये तो जिताओगी ही, मुझे भरोसा है, परंतु इतने प्रचंड मार्जिन से जिताना है जिससे आने वाले दिनों में जनता को दिए हुए वादों से मुकरना किसी भी राजनेता के लिए नामुमकिन हो जाए।
और हमारी मित्र हैं पालोमी, इस वक्त नंदीग्राम में ही हैं। उनको फोन लगाया हमने और पूछा कि बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन था, नंदीग्राम में अमित शाह भी थे, ममता भी थी, कैसा रहा आज रैलियों का दौर?
यहाँ पर एक तरह से दोनों पार्टीज ने जो है हर तरह का जो अपना एम्यूनिशन है, अपना रिसोर्स है, उन्होंने लगा दिया था आखिर के कैंपेन के दिन, क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी ने खुद गृह मंत्री अमित शाह को आमंत्रित किया, वो आए यहाँ पर, उन्होंने कैंपेन किया शुभेंदु अधिकारी के लिए। फिर जो स्टार प्रचारक है उनके, जो एक्टर टर्न्ड बीजेपी लीडर है मिथुन चक्रवर्ती, आखिर में वो भी आए और उन्होंने भी शुभेंदु अधिकारी के लिए प्रचार किया। तो बीजेपी ने जो अपने सबसे पॉपुलर फेसेस हैं उनको उतारा नंदीग्राम की जमीन पर शुभेंदु अधिकारी के लिए प्रचार करने के लिए। वही ममता बनर्जी भी चार सभाएं उन्होंने की, तीन सभाएं, एक पदयात्रा भी की, 3 किलोमीटर का रोड शो था उनका, वो भी उन्होंने किया। तो वो भी पूरी तरह से अपने आप को उन्होंने इस आखिर के दिन में, क्योंकि 3 दिन से वो लगातार यहाँ पर नंदीग्राम में है, उन्होंने अपने आप को इस आखिर के दिन में कैंपेन में झोंक दिया। यहाँ तक कि जब कुछ लास्ट एक आध घंटा रह गया था तो उन्होंने घरों तक जाना शुरू किया, गलियों तक जाना शुरू किया, लोगों से उस तरह से संपर्क करना शुरू किया। सभाएं जब खत्म हो गई उनकी, तो दोनों पार्टीज जो है उन्होंने पूरा अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इस कैंपेन में। अब देखना है कि वोटर किस ओर फैसला करती है।
अच्छा, प्रचार तो थम गया है दूसरे फेज का, लेकिन पार्टियां तो बूथ पर वोट पड़ने तक मेहनत करती ही हैं, आपको पता है। और इस मामले में अमित शाह की खूब ख्याति है कि बूथ मैनेजमेंट उनका कमाल का होता है। मुझे ये बताइए कि बाकी राज्यों की तरह क्या बीजेपी की बूथ मैनेजमेंट स्किल यहाँ भी देखने को मिल रही है? अभी आपने क्या महसूस किया?
बीजेपी कोशिश कर रही है। आप जानते हैं कि बीजेपी का एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था यहाँ पर, जो उनका जो संगठन था वो नहीं था कुछ बरसों तक। ये कुछ ही बरसों में, पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा है कि बीजेपी एक तरह से अपने संगठन को खड़ा कर रही है, तो उस वजह से उनके लिए काफी चैलेंज रहा है। जहाँ पे तृणमूल उनका एक संगठन रहा ही काफी वक्त से, तो वो उस एक तरह से देखा जाए तो उनका जो है वो अपर हैंड है उसमें। पर बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि हर जगह जाए, और जैसा कि आपने कहा कि अमित शाह इस चीज में सबसे ज्यादा एक तरह से दिलचस्पी कहे या फिर जो इंटरेस्ट की के आगे जो उनका जो फोकस रहता है वो उनका इस चीज पर रहता है, तो वो हमेशा चाहते हैं कि बूथ लेवल तक जो है मैनेजमेंट सही हो और जो कार्यकर्ता है वहां तक पहुंच सके। अब काफी इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी कमी है बीजेपी के संगठन खड़े करने में, पर वो कोशिश लगातार जारी रहती है। आप जानते हैं कि रिसेंटली इस बात का जिक्र तब हुआ जब एक ऑडियो क्लिप था टीएमसी ने जो सामने लाया, और उसमें मुकुल रॉय जो है, जो पार्टी के अभी कैंडिडेट भी हैं और राष्ट्रीय जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी बातचीत हो रही है शिशिर बिजोरिया के साथ, जो बीजेपी के लीडर है। और मुकुल रॉय का कहना है, ये कुछ वक्त पहले की बात है, और वो शिशिर बिजोरिया से कह रहे हैं कि जब आप इलेक्शन कमीशन से मिलने जाएं तब आप उनसे कहिए कि बूथ पे जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो उसमें ऐसा कोई रूल ना हो कि सिर्फ वहां का रेसिडेंट जो है, कंस्टिट्यूएंसी का रेसिडेंट है, वो ही पोलिंग एजेंट बन सकता है, कोई भी कहीं से भी आकर पोलिंग एजेंट बन सकता है। तृणमूल का कहना है कि इसके बाद ही एक दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने रूल चेंज कर दिया, अब पोलिंग एजेंट कहीं से भी हो सकता है, और ये गलत है जो किया इलेक्शन कमीशन ने उनका कहना है कि ये भाजपा के कहने पर इलेक्शन कमीशन ने किया, अभी तक भाजपा की ओर से कोई सफाई नहीं आई है इस ऑडियो क्लिप को लेकर। पर यही तृणमूल का कहना है कि अगर आप पोलिंग एजेंट कहीं से भी ला सकते हो, तो पोलिंग एजेंट का मतलब यही है ना कि अगर कोई गलत सलत वोटिंग हो रही हो या कोई इम्पर्सनेट कर रहा हो कह के कि मैं वोटर हूँ, मैं सो एंड सो हूँ और आ रहा है, तो वो बंदा अगर वहीं का हो, उसी कंस्टिट्यूंसी का, उसी रेसिडेंट एरिया का हो तो वो पहचान जाएगा। बाहर से कोई आया हुआ कैसे पहचानेगा? इसी लिए वो रूल हुआ करता था कि पोलिंग एजेंट उसी कंस्टिट्यूएंसी का हो, आसपास के इलाके से ही हो, पर अब वो रूल नहीं है। तो उसमें आपने देखा उस ऑडियो क्लिप में जो जिसका मैंने कहा है कि बीजेपी ने अभी तक पुष्टिकरण नहीं किया है कि वो ऑडियो क्लिप सही है या नहीं, पर उसमें आप मुकुल रॉय को बोलते हुए सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो अगर ये रूल रह गया कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही बन सकता है पोलिंग एजेंट, तो हमारे तो काफी तो फिर हम एजेंट नहीं दे पाएंगे। तो ये एक कमी रही है बीजेपी की और इस कमी को वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर किस हद तक कवर कर पाए हैं ये तो वक्त बताएगा।
कोरोना वायरस इंसानों में कैसे फैला, पिछले एक साल में इस पर बहुत बहस हुई और WHO की टीम ने अब एक बड़ा दावा किया है। उनका ये कहना है कि यह वायरस चमगादड़ से किसी दूसरे जानवर के जरिए इंसानों तक पहुंचा होगा। एक्सपर्ट्स ने इस वायरस के वुहान लैब से लीक होने की बात को खारिज कर दिया है, लेकिन लैब पर शक अब भी बना हुआ है क्योंकि कई क्रिटिक्स का कहना है कि WHO को चीन ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने ही नहीं दिया। वो कहते हैं कि जनवरी के महीने में ही WHO की टीम वुहान पहुंची, फिर टीम ने चीन की लैब में महज 4 घंटे बिताए और वेट मार्केट में 1 घंटा बिताया, बाकी के दिन होटल में ही गुजारे। खैर, वक्त बताएगा कि रिपोर्ट कितनी सही है, लेकिन भारत की बात करूं मैं तो पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से बुरी तरह जूझ रहा है। कई सारे राज्यों में मामले तेजी से बढ़े हैं। पटियाला जेल में 40 साल की महिला कैदी कोरोना पॉजिटिव निकली। IIM अहमदाबाद में 70 लोग संक्रमित पाए गए। तो बढ़ते केसेस के बीच कुछ शर्तों के साथ 1 साल बाद तबलीगी जमात का मरकज भी खोल दिया गया है, लेकिन दिल्ली दूसरी बार तेज हुए संक्रमण से अछूती बिल्कुल नहीं है। अभी भी स्थिति वैसी ही है, एक दिन में 1900 से ज्यादा मामले आए हैं। तो दिल्ली में COVID-19 की स्थिति जो बनी हुई है उस पर हमारे आज तक रेडियो के रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा कुछ बता रहे हैं।
इससे साफ ये पता चलता है कि जो सर्च है वो त्योहारी मौसम में हुई है, क्योंकि हमने पिछले 10-15 दिनों में देखा की बाजारों में भीड़ बढ़ी, रौनक बढ़ी, लोग आने जाने लगे और फिर एक तरफ जैसे वैक्सीनेशन शुरू हुआ था लोग नियमों से लापरवाह होने लगे। वजह यह भी हो सकती है कि 1 साल से ज्यादा हो चुका है लोगों को मास्क लगाने की हिंदुस्तान में कहां किसी को आदत है, और शायद उस वजह से लोग थोड़े से लापरवाह होते गए और अब वही लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। और देश के कई राज्यों में अमूमन यही स्थिति है, मुंबई देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, तो शहरी इलाकों में ज्यादा इसका असर है। लोग भीड़ भाड़ इलाकों में आने लगे, दुकानें खुलने लगी, सारी गतिविधियां तेज हुई तो लोग लापरवाह होने लगे। दूसरा, जब मैं एक डेटा देख रहा हूँ, 20 तारीख को जब यही केस 800 थे, लेकिन अगर आप 29 तारीख को जो सरकार द्वारा डेटा जारी किया गया अकेले दिल्ली में 1900 पहुंच गए, तो आप ये समझिए कि 10 दिन में अगर 800 से 1900 पहुंचते यानी लगभग 2.5 गुना सर, तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं एकदम विस्फोटक स्थिति है। हालांकि जो पॉजिटिविटी दर है दिल्ली में वो अभी भी 2.77% है, यानी चिंताजनक उसे नहीं कहेंगे क्योंकि दिल्ली में जो टेस्ट हो रहे हैं वो भी 70,000 से ज्यादा है और 19 तारीख को भी जो डेटा आया उसमें भी पिछले 24 घंटों में 56,000 अकेले सिर्फ RT-PCR टेस्ट थे और 16,000 के लगभग एंटीजन टेस्ट थे। तो दिल्ली में दरअसल प्रति मिलियन जो टेस्ट है वो अभी भी सबसे ज्यादा है और टेस्टिंग ज्यादा होने की वजह से अगर ज्यादा नंबर आ रही है तो उसको अनुपात में देखते हैं तो ये अभी कम है स्थिति, लेकिन चिंताजनक इसलिए है क्योंकि मार्च के पहले महीनों में केस 150-200 आ रहे थे और तब जो पॉजिटिविटी रेट थी वो 0.5, 0.06, 0.7 यानी 1% के नीचे थी। एक दिन में 1% से नीचे जा करके अगर ये 2.3% तक पहुंच रहा है तो इसे ही विस्फोटक स्थिति कहा जाता है। हालांकि दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति भी नहीं है, लेकिन अभी जो मामला है उसको लेकर सरकार चिंतित जरूर है।
अच्छा आशुतोष, मरीज फिर से बढ़ गए हैं, बोझ अस्पताल पर फिर पड़ रहा है, तो कितनी तैयार है दिल्ली?
ये सवाल मैंने आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछा था कि अगर इस तरह का सर्ज है तो उसका सीधा असर अस्पतालों में दिखाई देगा, फिलहाल सरकार की ओर से जो डेटा दिया गया उसके मुताबिक लगभग सरकारी अस्पताल, हेल्थ केयर सेंटर, आइसोलेशन के बेड जो थे उसमें 9000 बेड अभी खाली हैं, जिसमें आईसीयू बेड भी हैं, वेंटिलेटर्स भी हैं। तो सरकार का कहना है कि अभी जो सरकारी अस्पताल हैं, भले ही दिल्ली में मरीज जो है बाकी राज्यों के भी हैं, चाहे वो NCR में हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, इनके मरीज तो हैं, लेकिन अभी भी पर्याप्त संख्या खाली है। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि जल्दी ही निजी अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर समीक्षा की जाएगी कि अगर स्थिति मतलब असामान्य स्थितियों में विस्फोटक बन जाती है तो प्राइवेट अस्पतालों पर भी बोझ आएगा, तो ऐसे में उनकी भी तैयारियां पूरी होनी चाहिए, तो उसकी व्यवस्था भी सरकार की ओर से फिलहाल की जा रही है, जिसकी रिव्यू बैठक मुझे लगता है कल या परसों तक बुलाई जाएगी और उस पर भी सरकार तैयारियां करेगी कि इसके पहले अस्पतालों में किल्लत हो, तैयारियां पहले मुकम्मल हो जाए। हालांकि एक प्रैक्टिस हो चुकी है, 2 वेव में हमने देखा कि सरकार ने निजी अस्पतालों को टेक ओवर किया था, वहां पर बेड रिजर्व किए गए थे, लेकिन किल्लत उसके बावजूद भी होने लगी थी। फिलहाल अभी ऐसी स्थिति नहीं है और अगर सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था है, पर्याप्त है, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि चूंकि त्योहार बीत चुका है, अगले एक हफ्तों में ये संख्या में अगर कमी आती है तो ये अपने आप में राहत की खबर होगी।
ये थे आशुतोष। केस बढ़ रहे हैं तो वैक्सीनेशन अभियान पर जोर भी बढ़ा है। ब्राजील ऐसा देश है जहां बहुत फैला था कोरोना और अब यहां पर वैक्सीनेशन अभियान चल रहा था लेकिन वैक्सीन कम पड़ गई, तो हुआ ये कि विदेश मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। हमारे यहाँ महाराष्ट्र की स्थिति भी बराबर खराब है, 40,000 केस तो सिर्फ यहीं से आए हैं। अब सरकार जो है वो लॉकडाउन करने की सोच रही है, लेकिन पहले से वहाँ सियासत चल रही है, इसके बाद अब लॉकडाउन पर भी खूब सियासत होने लगी है। उद्धव ठाकरे CM लॉकडाउन लगाने के हामी हैं, लेकिन NCP BJP विरोध में है। क्या है इसकी वजह, ये हमने पूछा हमारे रिपोर्टर कमलेश सुतार से।
देखिए, BJP का ये कहना है कि पिछले साल जिस तरह से लॉकडाउन के वक्त जो प्रवासी मजदूर हैं, मुंबई में बाहर से आने वाले जो भी मजदूर थे, उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता, साथ ही साथ छोटे उद्योग हो, छोटे व्यापारी हो, उन्हें भी बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना उस वक्त करना पड़ा था, इसका कारण देकर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार करने से पहले सरकार को लोगों के लिए पैकेज का ऐलान करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष में होकर इस बात को विरोध करना तो एक बार एक राजनीतिक पर हम समझ सकते हैं इसको, लेकिन जो अलायंस पार्टनर्स है MVA की, शायद चाहे वो कांग्रेस हो या NCP हो, NCP के नेता नवाब मलिक ने भी कहा था कि लॉकडाउन अगर किया जाता है तो वो इस बार लोगों को काफी तकलीफ देने वाला रहेगा। साथ ही साथ संजय निरुपम जो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस भी MVA का एक घटक दल है, MVA के कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ये भी कहते हैं कि इसका हम सख्ती से विरोध करेंगे क्योंकि लोगों को तकलीफ इससे होती है। तो इंटरनली अगर हम देखा जाए तो तीनों पार्टियां इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं एक पन्ने पर नजर नहीं आती, तीनों पार्टियों में अलग अलग इसको लेकर विचार है। अभी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे शिवसेना के मुख्यमंत्री हो, लेकिन जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं इसको कंट्रोल में लाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ सख्ती से बरतना पड़ेगा, लेकिन लगातार प्रशासन के अपील के बावजूद भी लोगों ने आज तक हमने देखा है कि भीड़ बढ़ती गई, विशेषकर होली के त्यौहार में हमने देखा कि बड़े पैमाने पर लोग दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं एक तरफ लोगों को समझाना, दूसरी तरफ अपने घटक दलों को समझाना और तीसरी तरफ कोरोना के आंकड़े को कंट्रोल में लाना है, तीनों तरफ ये तीनों चीजों को बैलेंस करने का एक बहुत बड़ा टास्क उद्धव ठाकरे को इस वक्त करना पड़ता है और साथ ही साथ इसको लेकर चल रही सियासत, इसको लेकर चल रही राजनीति को भी उन्हें संभालना पड़ रहा है।
एक लाइन को लेकर के और उसको घंटों तक बिल्डअप करना है ना, है ना, लहिगा। एक लाइन और कमाल होती थी, इसका कोई सिर पैर नहीं था। सुख शनिचर मंगलवार, सुख शनिचर मंगलवार, अब ये चल रहा भांग के खेल में, आप यही गा रहे हैं।
दिन थ्वारा थ्वारा बड़ा भवा, मौसम मा गर्मी बढ़ई लाग, ख्यातन मा मटरा नाच नाच, अरसी के गर्मा पड़ी लाग, पछियाओ बयरिया सुरसुरा है। यानी कि पछुआ हवा जब सुरसुराने लगे, पछियाओ बयरिया सुरसुराए, समझो होली नहीं चाय रही। तीन रंगों के तीन किरदार, ताऊ बाबा और मैं यानी सरदार, हर हफ्ते हम करते हैं बतकही, सारे जहान का ज्ञान और मजेदार गप भी। सुनिए हमारा वीकली पॉडकास्ट 3 तार, नया हफ्ता नया पवाल, aajtak.in/radio के साथ साथ Spotify, JioSaavn, Apple Podcast और Google Podcast जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।
उधर म्यांमार में लगातार कंडीशन बिगड़ रही है, दुनिया की निगाहें अब इस देश पर हैं। पहले तो कई देशों के सेना अध्यक्षों ने मिलकर म्यांमार की सेना को पेशेवर आर्मी होने का मतलब समझाया और अब अमेरिका ने अपना व्यापार समझौता तोड़ लिया। ये सब इसलिए है क्योंकि 1 फरवरी के तख्ता पलट के बाद से अब तक 423 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 90 लोग तो एक दिन में ही मारे गए। भारत भी इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है, तो हमने बात की प्रोफेसर हर्ष पंत से, ORF दिल्ली में पढ़ाते हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पर देश विदेश के अखबारों में, मैगजीन्स में लगातार लिखते हैं। तो प्रोफेसर पंत, मेरा सवाल यह है कि स्थिति सुधरने की तरफ जाने की बजाय अब और बिगड़ रही है। क्या व्यापारिक समझौतों को होल्ड पर डालने के बाद अब इकोनॉमिक बैन भी झेल सकता है क्या म्यांमार?
म्यांमार अगर इसी राह पर चलता रहा तो निश्चित तौर पर इकोनॉमिक सैंक्शंस की नौबत आएगी और व्यापारिक समझौतों को होल्ड पर डालने के बाद, जैसा आपने जिक्र किया, इकोनॉमिक बैन की भी संभावना बिल्कुल बढ़ जाती है, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, हमने उनका नज़रिया देखा है, वो बहुत ज़्यादा इस विषय को लेकर चिंता जता रहे हैं और उनका जो रोष है इस मुद्दे पर वो साफ नज़र आ रहा है। इंटरनेशनली भी हमने देखा है कि UN की तरफ से काफ़ी वार्निंग साइंस निकल रहे हैं। तो ये म्यांमार की जो मिलिट्री सरकार है, मिलिट्री युनिटा है, उसको सोचना पड़ेगा कि वो कितनी दूर के कहाँ तक इस मुद्दे को ले जाना चाहती है, और जितनी देर होगी, जितनी ज़्यादा जाने जाएंगी, जितना टर्बुलेंस म्यांमार में होगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट म्यांमार की मिलिट्री सरकार को झेलना पड़ेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सैंक्शंस जो अभी लगी हैं उसके बाद इकोनॉमिक आइसोलेशन की बात ही होती है, और इकोनॉमिक आइसोलेशन पहले भी म्यांमार झेल चुका है, और मुझे लगता है ये म्यांमार सरकार के लिए, जो म्यांमार की मिलिट्री युनिटा के लिए, जो एक समय म्यांमार को ग्लोबल मेनस्ट्रीम में लाने की इच्छुक थी, उसके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है।
अच्छा, पहले भी हमारी बात हुई है सर इस पर, मैंने पूछा था कि भारत पर क्या फर्क पड़ता है इस कू का, तो आपने कहा था कि हम पहले भी ज्यादा रिएक्ट कर नहीं रहे थे, अब भी नहीं करेंगे, मगर सर अब तो हालात बहुत बदल गए हैं, स्थिति और खराब हो गई है, तो क्या भारत सरकार चुप रहने की नीति ही अपनाएगी या कोई चेंज दिखेगा?
कि भारत के लिए तो अभी भी वही संभावना बनी हुई है कि भारत को तो बैलेंस करना है अपनी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ म्यांमार में डेमोक्रेसी की संभावना को। तो जहां तक भारत का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत की सरकार अभी भी बैक चैनल के द्वारा मिलिट्री सरकार, म्यांमार की मिलिट्री सरकार के साथ कॉन्वर्सेशन जारी रखे हुए है, और यही एक तरीका है जिसको जो भारत को लगता है कि पहले भी सफल हुआ था, आगे भी सफल होने की इसकी ज़्यादा संभावना है। भारत के हिसाब से जितना ज़्यादा मिलिट्री युनिटा को, म्यांमार की मिलिट्री युनिटा को आइसोलेट किया जाएगा, वो उतनी ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकती है और ज़्यादा वायलेंट हो सकती है और ज़्यादा आक्रामक हो सकती है ऑर्डिनरी म्यांमारीज के अगेंस्ट। और इसी की चिंता व्यक्त करते हुए भारत ने बार बार स्पष्ट करी है कि भारत चाहेगा कि वहाँ पर डेमोक्रेसी की बहाली हो, भारत चाहेगा कि म्यांमार में वापस से मिलिट्री जो है म्यांमार की, वो बैरक्स में जाए, न कि सरकार चलाए। लेकिन भारत को इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर भारत वहाँ पर इंगेज नहीं रखता है, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन नहीं रखता है म्यांमार की मिलिट्री सरकार के साथ, तो चीन वहाँ पर अपने चीन का प्रभाव और बढ़ेगा, और म्यांमार की जो मिलिट्री सरकार है उसके पास ऐसा कोई लॉजिकल रीज़न नहीं बच जाता कि वो भारत जैसे लोकतांत्रिक जो देश हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखे। तो वहाँ पर जो भारत को देखना पड़ेगा, भारत की सरकार को देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से इस ये बैक चैनल डिप्लोमेसी को आगे ले जाते हैं, और किस तरह से जो भारत के सब सारी पॉलिटिकल एंटिटीज़ के साथ, सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, उसको लेकर किस तरह से लोकतंत्र की बहाली की प्रक्रिया वहाँ म्यांमार में फिर से शुरू की जा सकती है, भारत को उस इस विषय पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत की जो जो पब्लिक एक पॉलिसी रही है कि भारत पब्लिकली म्यांमार की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उसको सेंसर नहीं करेगा और पब्लिकली उसको ह्यूमिलेट नहीं करेगा, ये पॉलिसी मुझे लगता है और थोड़ा आगे चलेगी, लेकिन ये भी निर्भर करता है कि मिलिट्री सरकार अगर और आक्रामक हुई और ज़्यादा हिंसा पर उतर आई और ज़्यादा लोगों की जाने जाती हैं तो भारत अपनी इस पॉलिसी को रीवैल्यूएट कर सकता है। लेकिन फिलहाल भारत बैक चैनल डिप्लोमेसी का ही सहारा लेने के पक्ष में दिख रहा है।
डिजिटल होते समाज में हमारी निजता ठेंगे पर है। मैं बार बार यही कहता हूँ, जब जब ऐसी खबरें आती हैं कि फलां कंपनी के यूजर्स का डेटा लीक हो गया, अब मैं आपसे अलग नहीं हूँ तो भैया चिंता मुझे भी होती है ऐसी खबरों से। कई बार तो ऐसी ऐसी कंपनियों का डेटा लीक हो चुका है जिनके प्रोडक्ट्स या ऐप मैंने भी इस्तेमाल किए हैं, कई उदाहरण हमारे पास, और अब तो लंबी लिस्ट है ऐसी कंपनियों की जिनके यूजर्स का डेटा चोरी हुआ है। एक नया नाम जुड़ गया है उसमें, मोबाइल पेमेंट ऐप है मोबीक्विक, इसके डेटा चोरी होने की खबर आ गई है और ये सरेआम बिक भी रहा है। कहाँ? डार्क वेब पर, जहाँ इस तरह के लीगल काम खूब जमकर होते हैं। और इस लीक की जानकारी दी है फ्रेंच वाइट हैकर और सिक्योरिटी रिसर्चर एलियट एंडरसन ने, ट्विटर पर बताया उन्होंने और कहा कि 35 लाख लोगों का KYC डेटा लीक हुआ है इस बार। समझ लीजिए इसका मतलब क्या है, कि आपकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आधार, ये सब जानकारियाँ अब सार्वजनिक हैं। एलियट ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा KYC डेटा लीक बताया है। तो ये डेटा लीक हो कैसे गया, ये मैंने पूछा आज तक रेडियो के टेक एक्सपर्ट मुंजिर अहमद से।
मोबीक्विक का जो 8 TB का डेटा ब्रीच हुआ है उसमें बताया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि दरअसल कई तरह से डेटा लीक होते हैं, लेकिन ये जो डेटा लीक है इसमें है कि डेटा एक्सेस कैसे किया गया, मतलब मोड ऑफ डेटा एक्सेसिंग फिलहाल क्लियर नहीं है। लेकिन अभी जैसे कुछ देर पहले कुछ लोगों ने ट्वीट करके बताया कि डेटा बेस जो है इसका इनक्रिप्टेड नहीं था और सिक्योर नहीं था, इस वजह से जो हैकर है उसका डेटा पूरा एक्सेस करके और डार्क वेब पर बेच रहा था। तो ये कोई नया नहीं है, डेटा बेस कई कंपनियों द्वारा ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जिसमें इनक्रिप्शन नहीं होता और वो ईजी टू हैक होता है बेसिकली। तो डेटा लीक का मोड अभी क्लियर नहीं है, कंपनी ने तो साफ ही मना कर दिया है कि हमारे यहाँ से किसी भी तरह का डेटा ब्रीच नहीं हुआ है।
मुंजिर, अभी मैं देख रहा था कि लोग सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं अपना डेटा फाइंड करके, तो क्या इतना ओपन है कि कोई भी एक्सेस कर रहा है?
ये जो बताया जा रहा है डेटा एक्सेस करने वाला, तो ये दरअसल ऐसा है कि एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है जहां से जा करके चेक किया जा सकता है, लेकिन इस पे पूरा भरोसा करना सही नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो वेबसाइट होती हैं वो आपको 100% फुल प्रूफ कुछ रिजल्ट नहीं देती हैं। तो इसमें ये तो सही है कि आप कुछ हद तक ये कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा लीक हुआ है या नहीं, उसके लिए कई सारी वेबसाइट हैं वो ओवरऑल बताती हैं कि कहाँ कहाँ से आपका डेटा लीक हुआ है, तो वो किया जा सकता है। लेकिन अब ये जो मोबीक्विक के डेटा का जहां तक सवाल है, तो कुछ समय पहले वेबसाइट एक एक्टिवेट हुई थी जो बता रही थी कि ये सब डेटा लीक हुआ है, लेकिन फिलहाल कई लोग उस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो अनएक्सेसिबल बता रहा है। तो मेरा कहना यह है कि इन सब पे भरोसा कर पाना मुश्किल है कि यहाँ से आपका डेटा एक्सेस किया जा रहा है, और क्योंकि डार्क वेब को एक्सेस करना एक कॉमन मैन के बस की नहीं होती, उसको एक्सेस करने के लिए आपको कई लेयर की जरूरत होती है और वो गूगल में सर्च करके आप नहीं कर सकते, उसके लिए कई सारे टूल्स होते हैं जिसे यूज किए जाते हैं। तो डार्क वेब में एक्सेस करने का तरीका कुछ और है, तो वहां वो क्लेम किया जा रहा है, हमने भी इंडिपेंडेंटली इसे वेरीफाई किया है, तो वहां डेटा है और डेटा ऑन सेल है, बट मोबीक्विक ने इसे साफ तौर पर डिनाई किया है। इनफैक्ट अभी उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किया इसे लेकर के।
अच्छा मुझे क्या कहा है कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में, थोड़ा सा विस्तार से बताइए।
तो मोबीक्विक का जो स्टेटमेंट है उसमें कंपनी ने कहा है कि इसे भारत में लगभग 100 मिलियन यूजर्स यूज करते हैं, और कंपनी बेसिकली यहाँ पे ये बताना चाह रही है कि कई सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं जिन्हें फॉलो किए जाते हैं, तो उसमें ये सब भी बताया गया है कि कौन कौन से सर्टिफिकेशन जो है वो कंपनी के पास है। इसके बाद कंपनी ने ये कहा है कि कुछ यूजर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि उनका डेटा जो है वो डार्क वेब पे विजिबल है, तो इस चीज को लेकर के कंपनी जांच कर रही है, और उन्होंने ये भी पॉसिबिलिटी जताई है कि कोई भी यूजर अपना जो अकाउंट है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर सकता है, या ऐसा हुआ होगा तो ये कहना मुश्किल है या फिर गलत है कि डेटा डार्क वेब पे एक्सेसिबल है और सभी मोबीक्विक का है। तो कंपनी ने साफ तौर पर डिनाई किया और ये पॉसिबिलिटी बताई है। हालांकि ये भी कहा गया है कि जांच की जा रही है और इस मैटर को पिछले महीने ही देखा गया था, जिसके बाद कंपनी ने थोरो इन्वेस्टिगेशन किया। बेसिकली इसका क्रक्स ये है कि कंपनी नहीं मानती है कि डेटा ब्रीच हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी जांच की जा रही है। हालांकि स्टेटमेंट में कई सारे कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स भी हैं, जो कि अभी आने वाले समय में कुछ क्लियर होगा।
ये थे मुंजर। तो आज के दिन भर को समेटने का हो गया है वक्त। आपको कैसा लगा हमारा न्यूज पॉडकास्ट बताइएगा radio@aajtak.com पर। इस शो को प्रोड्यूस किया है प्रतीक वाघमारे ने और कपिल देव सिंह साउंड मिक्सिंग का काम संभाल रहे थे। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ कल सुबह आपकी मुलाकात होगी अमन गुप्ता से, और हमारे न्यूज मॉर्निंग पॉडकास्ट का नाम है आज का दिन। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो।
इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट के आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। ऑनलाइन टेस्ट शनिवार 10 अप्रैल 2021। मौका है मीडिया जगत के दिग्गजों के साथ इंटर्नशिप करने का। विजिट करें www.indiatoday.in/ITMI/ या कॉल करें 9560065465।